दो मुटलियां है, पांच नंबर की पॉइंट क्या है? मैपन नहीं, करावनहार करा रहा है, नॉट आई, बाबा इज डूइंग थ्रू मी। दो तीन दिन पहले या कल परसों ही एक इंटरव्यू हुआ था डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, ये पद्मश्री पद्मभूषण भारत के कार्डियक सर्जन है। 1992 में उन्होंने 21 दिन के बच्चे पर ऑपरेशन किया था, फर्स्ट न्यूनेटल हार्ट सर्जरी। तो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया, जब ये हार्ट सर्जरी कर रहे थे, किस पे? 21 दिन के बच्चे पर, फर्स्ट न्यूनेटल हार्ट सर्जरी, तो आपको टेंशन नहीं था क्या? स्ट्रेस, इतने छोटे बच्चे पर, 21 दिन का बच्चा, उसका नाम था रोनी। वो रोनी जो था, थी, जो भी तो उस पर 92 में उन्होंने ऑपरेट किया। तो अभी इंटरव्यू हुआ था, तो अभी उनसे पूछा कि आपके अंदर प्रेशर था क्या? तो उन्होंने कहा, जब भी मैं ऑपरेशन करता हूँ, ऑपरेशन से पहले भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं निमित्त हूँ। ऑपरेशन के बाद वापस प्रार्थना करता हूँ, नहीं तो बाहर रिश्तेदार रिलेटिव्स होते हैं, एक पेशेंट का ऑपरेशन चल रहा है, 45 एज है उसकी, बाहर उसकी पत्नी है, उसके माँ बाप है, मैं ये सोचता हूँ अगर ये नहीं रहेगा उस परिवार में तो उस परिवार का क्या होगा। एक आर्टिस्ट के लिए परफॉर्मेंस बेस्ट है, और ये ट्रिमेंडस प्रेशर है, एक बहुत हाई रिस्क प्रोसीजर है ये सारी, मेडिकल की सारी, केवल ऑपरेशन ही नहीं। तो उन्होंने ये बात कही कि मैं धार्मिक नहीं हूं, आई एम नॉट रिलीजियस, बट आई एम स्पिरिचुअल। इसलिए ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद मैं क्या करता हूं, भगवान से कहता हूं कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, कराने वाले तुम हो, बाबा बाबा करावन हार कौन है? बाबा, नॉट आई। तो आज का पांचवें नंबर का होमवर्क ये है, कुछ भी करने से पहले क्या सोचो, ये सब बाबा का है, ये सारे पैसे जो आ रहे और जा रहे बाबा के हैं, ये सारी वस्तुएं जो आ रही है और जा रही है बाबा की है, ये सारी सौगात गिफ्ट जो आ रही है और जा रही है बाबा की है, ये घर उसका है, ये सेंटर उसका है, ये गाड़ी उसकी है, ये भोजन सब कुछ हर वस्तु उसकी है, मेरा कुछ भी नहीं है। सफलता आ रही है, सफलता जा रही है, सब कुछ उसी का है। एवरीथिंग फ्लोस फ्रॉम द डिवाइन। तो जब संसार का भी कोई व्यक्ति उस निमित्त भाव को लाता है तो सफलता उसके कदम चूमती है स्वतः। तो ये आज का पहला कार्य, पांचवा। चौथा कार्य है गुप्त दान। पब्लिक दान में ईगो का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, पब्लिक दान में क्या होता है, ईगो रिस्क, और साइलेंट डोनेशन में प्योर पुण्य, वो पुण्य है। तो आज क्या करना है, एक गुप्त दान करना है, पर वो मनसा वाला नहीं, स्थूल, कोई स्थूल वस्तु का गुप्त दान, पैसा भी हो सकता है, किताब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, परंतु उसमें नाम ना आए। जहां नाम आ गया वहां पर माया चालू हो जाती है। आई एम अ नेम विदाउट फॉर्म। तो गुप्त दान ये है चौथे नंबर का होमवर्क। तीसरे नंबर का होमवर्क आज का है सोर्स ऑफ इनकम, क्या है? स्टडी। तो एक लाइन लिखनी है अपनी डायरी में, और वो इंग्लिश में ही लिखनी है, लाइन है मुरली इज माई हाइएस्ट इनकम, मुरली इज माई हाइएस्ट इनकम। और दूसरी लाइन, दूसरे नंबर का होमवर्क है, हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। इस लाइन को हिंदी में ही लिखना है। पहली लाइन कौन सी है, मुरली इज माई हाइएस्ट इनकम। एम लिखेंगे, एम का ये पॉइंट नीचे टच होना चाहिए, इसको ऊपर ही नहीं छोड़ देना, इसको नीचे टच कराओ। मुरली इज माई हाइएस्ट इनकम, ये लाइन लिखनी है। दूसरा, हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। और पहला होमवर्क आज का, एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल में बीच में लिखेंगे आई एम अ फॉर्चुनेट सोल, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। ऊपर दिव्य जन्म, डिवाइन बर्थ, दिव्य संबंध और दिव्य प्राप्ति, कौन के तीन हिस्सों में तीन बातें। तो ये आज के पांच कार्य हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो थर्ड नंबर पॉइंट से संबंधित है, मुरली क्या है हमारा, इनकम, स्टडी है। तो स्टडी के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, न्यूरोसाइंस ऑफ स्टडी। सबसे पहला, ये चार बातें होनी चाहिए, सबसे पहला जो भी हम स्टडी करें उससे, स्टेप नंबर वन फैमिलियराइजेशन, उससे हम परिचित हो जाए। मुरली पढ़नी है, एक डायरी है, मुरली बुक है किसके पास, तो एक मुरली पढ़नी है, जैसे ये मुरली है 12-11, तो इससे सबसे पहले परिचित होना है। कैसे परिचित होंगे, अच्छा डेट ये है, ये उसका हेडिंग है, फर्स्ट पैराग्राफ इतना बड़ा है, ये सेकंड, फिर थर्ड, फिर ये पांचवा, अच्छा कुछ बोल्ड में लिखा हुआ है तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी, फिर तीसरा, फिर ये डबल विदेशी दिख रहा है, अच्छा छोटा सा आ गया, फिर माता क्या करेगी आ गया, फिर अच्छा आ गया, फिर कर्नाटक का टर्न आ गया, 1500-2500 आए हैं, फिर इंदौर कन्या छात्रावास, फिर ड्रिल है एक, फिर दादियों से है, सभा है, क्या कर लिया, पूरा परिचय कर लिया कि ये है। चाहे कोई भी मेडिकल, लीगल, सीए की पढ़ाई, कोई भी पढ़ाई, कोई भी टैक्स, सबसे पहला क्या हो, परिचित। हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, टॉपिक्स क्या है, कितने पेज का है, किससे मुलाकात हो रही है, तो अभी हमें याद आ गया इसमें क्या क्या है, कर्नाटक वाले बैठे हैं, इंदौर हॉस्टल की कुमारियां बैठी है, दादियां बैठी है, माताएं बैठी है, ड्रिल हुई है बीच में, एक आइडिया आ गई कि इसमें क्या क्या है। सो फर्स्ट स्टेप इज फैमिलियराइजेशन, सेकेंड स्टेप इज ब्रेन डंप, ब्रेन डंप, ब्रेन डंप। ब्रेन डंप क्या होता है, व्हाट इज ब्रेन डंप, ये सब डिस्कस हो चुका है सिमरन क्रांति में। ब्रेन डंप एक बार पढ़ लिया और पढ़ने के बाद उसको क्या क्या याद आता है, वो जो कुछ भी लिखते जाओ, स्क्रिबल, जो कुछ याद आता है पूरा उसमें डाल देना। एक बार पढ़ लिया और अपने मन में जो भी याद आ रहा है फटाफट फटाफट लिखते जाना उसको, उसको कहते हैं पूरा कचरे के डिब्बे में जैसे डाल रहे हैं, हम पूरा डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, याद हमको रहेगा। तीसरा, स्पेस रेपिटिशन, हम जो भी पढ़ते हैं 24 घंटे के अंदर 70% तो भूल जाता है, तो फर्स्ट रिवीजन हमारा होना चाहिए 24 घंटे के अंदर, सेकंड रिवीजन 7 दिन के अंदर, थर्ड रिवीजन 30 डेज के अंदर। अगर कोई नया शब्द आपको मिलता है इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, किसी भी भाषा में, उसका रिवीजन होना चाहिए 24 घंटे के अंदर, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन 7 दिन के अंदर, थर्ड रिवीजन 30 दिन के अंदर, फोर्थ रिवीजन 6 मास के अंदर। अगर ये कर लिया तो वो शब्द, वो बात परमानेंट याद रह जाएगी। अभी ये मुरली पढ़ी, अगर इसको हमने रिवाइज नहीं किया 24 घंटे में तो ये गई, एक बार इसको फट से रिवाइज कर लेना है। और अगली जो भट्टी अभी 1 तारीख से चालू होगी उसमें ये वाला सिस्टम बंद कर देंगे अभी, क्योंकि ये जो अभी हम रिवाइज कर रहे हैं ना, वो रिवाइज नहीं हो रहा है, वो सेकंड क्लास में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा रिवाइज नहीं कराना है, वो सेकंड क्लास हो रहा है, एक एक लाइन पढ़ के सुना रहे हैं, वो अभी तो क्लास सुनी है आधा घंटा, उसका वापस 15 मिनट एज इट इज रिविजन। रिविजन मीन्स क्विक, 10-15 चीजें हमने पकड़ ली है, वो पूरा पूरा नहीं सुनाने पर बैठना है, पूरी कहानी अगर चलाएं तो ये 1 घंटे की 2 क्लास हो जाएगी, आधा घंटा क्लास और आधा घंटा रिवीजन एज इट इज़। रिविजन इज ओनली क्विक, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ले लो बस, वो कहानी है वो सब नहीं सुनानी है उसमें। रिविजन मीन्स, और वो भी अगले इसमें जो पहली वाली क्लास की है, अगले दिन का वक्ता उस क्लास की सारी बातें अपनी क्लास में इंक्लूड कर देगा उस मुरली के साथ, अलग से आके कोई बैठेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा खींचा जा रहा है। हाँ, वो भी बहुत अच्छी बात है, वो अपने आप में एक कला है, तो एक महीना कर लिया ना, अभी कुछ और एक महीना बहुत अच्छे प्रैक्टिस हो गई है, वो भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि जो सुनते समय हम कितना अटेंटिव थे, जैसे अभी पन्नालाल भाई ने एक एक पॉइंट सुना दी पूरी की पूरी, मतलब कितना हाई लेवल का फोकस रहा सुनते समय, कहीं जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छी कला है, पर हमारा टारगेट जो है वो है रिवीजन। तो अगली भट्टी से वैसा, तो क्या बताया, स्पेस रिवीजन, और लास्ट क्या है, कॉन्टेक्स्टुअल यूज। कॉन्टेक्स्टुअल यूज अर्थात जो पढ़ते हैं उसकी एग्जाम होनी चाहिए, वो कोई पूछे हमको या लिखे, जब भी हम एग्जाम देते हैं एमैट, उसमें जो आंसर गलत हुआ सोचो ये गलत क्यों हुआ, इसका सही क्या है, ये अपने आप को टेस्ट देना। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बातें, उस मुरली में उस टेक्स्ट में जो भी हम याद कर रहे हैं उसमें इमोशंस जुड़ने चाहिए, तो ही चीजें याद रहती है। जैसे वुमेन लिटरेसी रेट, महिला साक्षरता दर है फॉर एग्जाम्पल 74%, अभी इसको याद रखना है, ये कहाँ याद रहता है। तो इसमें हम कहेंगे हर चार में से एक महिला अपना नाम तक लिखना नहीं जानती, अभी क्या कर दिया हमने, इसमें एक भाव जोड़ दिया, एक इमोशन डाल दिया, या दर्द ऐसा जब डाला जाएगा तो फिर वो याद रहेगा। तो क्या करना है उसमें, अटैच इमोशंस, जिस चीज में हमारे इमोशंस ऐड हो जाते हैं वही हमको याद रहती है। ये मुरली के साथ हमारे इमोशंस जुड़े नहीं है तो ये याद नहीं रहेगी। उस हर मुरली के साथ हम कहां थे उस समय, जैसे ये जो मुरली चली 15 दिसंबर 2003, हमारा व्यक्तिगत, हम यहां आए थे वापस मधुबन में ज्वाइन करने के लिए, हाथ में एक थैला एक चप्पल बस वो भी टूटी हुई, उतना ही थैला लेके आ रहे थे नीचे से ऊपर माउंट आबू ज्वाइन करने के लिए। एक भाई थे साथ में, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो, हमने कहा मधुबन जा रहे हैं। तो ये मुरली सुनी 15 तारीख की, उसके अगले दिन 16 तारीख को ऊपर ग्लोबल आने के लिए, तो उन्होंने कहा रहोगे कहाँ, हमने कहा ये तो हमने पूछा ही नहीं रहना कहाँ है। फिर हमने सोचा था कि वो जाते समय शंकर मठ दिखा था, शायद वहां जगह मिल गई तो वहीं रह लेंगे क्योंकि जगह का ठिकाना नहीं, कपड़ों का कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं था, वैसे ही आ गए थे हॉस्पिटल में पुरानी बात है। तो 16 तारीख, तो इसमें इमोशन जुड़ गए तो वो याद रहेगा। फिर हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर प्रताप ने से मिले, कुर्ता पैजामा, तो उन्होंने कहा एक डॉक्टर आए ज्वाइन करने, तो उन्होंने कहा सामान, मैंने कहा यही है, तो उन्होंने फिर वो एक भाई को बुलाया, एक नया डॉक्टर आया है इसको पहले कपड़े दिलाओ तो हमें बड़ा पीड़ा हुई थी कि हम तो ये कुर्ता ही पहनेंगे, ये पैंट और ये शर्ट हमको नहीं चाहिए, पर जो भी है, तो इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो जब मुरली के साथ इमोशंस जुड़ेंगे तो मुरली याद रहेगी। जैसे बताया ना, चार में से, हर चार में से केवल एक ही महिला अपना नाम तक लिखना नहीं जानती है। तो अभी इसको क्या कर दिया आपने, इमोशन डाल दिया उस फिगर में। ये अकाउंट्स का है, ये स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक तो बिल्कुल याद नहीं रहता। तो उस स्टैटिस्टिक्स में उस मुरली भी क्या है, मुरली में ना कोई चित्र है, ना कोई डायग्राम है, कुछ भी नहीं है, ना कोई कलर है। और बच्चों की किताबें कैसी होती है, कलरफुल होती है, इधर भी कलर, इधर तो यही पिक्चर रहता है कोई चेंज ही नहीं है, ना कोई जोक है कहीं, ना कोई फुट नोट में कुछ स्लोगन है, कुछ भी नहीं है। अभी इसको याद रखना है तो इसको वी विल हैव टू पुट इमोशंस। तो ये चार बातें याद रखनी है, फेमिलराइजेशन, ब्रेन डम्प कर देना, स्पेस रिपीटेशन, कॉन्टेक्स्टुअल यूज, टेक उसकी ये देना, और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अटैच इमोशंस। और जैसे कहा कि ये आज 26 तारीख है, 27 मार्च दादी जान की हॉस्पिटल में थे रात में, वो कल बताएंगे उससे रिलेटेड कुछ बातें। तो ये पांच कार्य आज का, सबसे पहला बताया एक ट्रायंगल बनाना, उसमें भाग्य संबंध प्राप्ति, दूसरा बताया हमारा पालनहार स्वयं भगवान है, सब एक साथ बोलेंगे हमारा पालनहार स्वयं भगवान है, अगला मुरली इज माय हाईएस्ट इनकम, एक बार बोलेंगे मुरली इज माय हाईएस्ट इनकम, और फिर बताया एक गुप्त दान आज करना है, गुप्त दान जिसमें स्थूल वाला होना चाहिए, वो स्थूल कोई स्थूल एक ही बस है, क्योंकि पब्लिक दान में ईगो की बहुत बड़ी रिस्क है, बहुत भयंकर। और ये जो है ना, ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये व्हाइट, चार प्रकार के बोर्ड होते हैं, एक ब्लैक बोर्ड होता है, एक नोटिस बोर्ड होता है, एक ग्रीन बोर्ड होता है, एक व्हाइट बोर्ड होता है, अभी डिजिटल बोर्ड, तो ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, इसको व्हाइट बोर्ड। फिर लास्ट पॉइंट बताया था बाबा बाबा, तो आज जो भी करो क्या सोचो, मेरा कुछ नहीं है, वो मुझसे करा रहा है, उसको जो कराना है कराएगा, उसको नहीं कराना है तो शांति से बिठा देगा एक जगह, उसको घुमाना है तो घुमाएगा, उसको बिठाना है तो बिठाएगा, हमारा कुछ है ही नहीं, उसका काम है वो जाने। और आज छुट्टी है, तो छुट्टी तो क्या। और लास्ट पॉइंट, ये बाबा के महावाक्य है, एक बार पढ़ के सुना रहे हैं, इसको एक बार आप ग्रुप में भी पोस्ट करेंगे, इसको पढ़ना, मीठे बच्चे अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए कभी भी सुनी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। फर्स्ट पॉइंट, अभी जो हम सुना रहे हैं ना उसको लिखना नहीं है, माइंड से क्राफ्ट कर लो, 10 बातें हैं और जैसे ही हम पूरा करेंगे उसको याद करने की कोशिश करना, पढ़ना बाद में, ठीक है। विथ एक्सट्रीम फोकस, जैसे व्यक्ति सुना रहा है और मेरे अंदर प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट, उस पूरे वाक्य से की पॉइंट पकड़ लेना, सेकेंड लाइन की पॉइंट पकड़ लो और अंदर बिठा दो। मीठे बच्चे, अपनी अवस्था एकरस बनाने के लिए कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। पॉइंट नंबर टू, तुम एक बाप से सुनो, फालतू बातों से किनारा कर लो। पॉइंट नंबर थ्री, तुम्हें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि इस अनादि ड्रामा में हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। पॉइंट नंबर फोर, इस ड्रामा की हर सीन तुम बच्चों को बहुत पसंद आनी चाहिए, क्योंकि यह ड्रामा स्वयं रचयिता बाप को बहुत पसंद है। पॉइंट नंबर फाइव, यह सुख दुख हार जीत का बहुत सुंदर नाटक बना हुआ है। पॉइंट नंबर सिक्स, इसमें हर एक एक्टर अपना विशेष पार्ट बजा रहा है, इसलिए ड्रामा की हर सीन देखकर सदा हर्षित रहो। पॉइंट नंबर सेवन, तुम इस कल्याणकारी ड्रामा में किसी को भी दोषी नहीं बना सकते। पॉइंट नंबर एट, क्योंकि जो कुछ पास्ट हो चुका वह होना है, बनी बनाई बन रही है, इसलिए किसी को भी दोष नहीं दे सकते। पॉइंट नंबर नाइन, यह ड्रामा की बहुत सुंदर भावी बनी हुई है। पॉइंट नंबर टेन, जो बच्चे साक्षी दृष्टा बनकर ड्रामा के हर एक का पार्ट देखते हैं, उनकी स्थिति मधु समान मीठी बन जाती है, वे सदा एक रस अचल अडोल रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करना, आंखें बंद।
समय की घंटी बज रही है, भाग्य की घड़ी बीत रही है, संगम की वेला ढल रही है, पुरुषार्थ की अग्नि जल रही है। बनी बनाई बन रही है, ये संसार की लीला चल रही है। ना मानो सनी सुनाई बातों को, न करो निंदा दो सम्मान सबको, ना समझो दोषी किसी को, सुनो बस एक भगवान को। बनी बनाई बन रही है, ये भाग्य की धारा बह रही है।